رہ گئی بات تمہارے مال کی، تو قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ومن عبادہ یقدر له، اے نبی آپ کہیے کہ یقیناً میرا رب کچھ ادا کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ کس بات کا جواب ہے؟ وہ اوپر اموال و اولاد، وہ کہتے تھے یہ مال اولاد اللہ نے خوش ہو کے دیا، اللہ کہتے نہیں یہ تنگی ترشی ہمارے ہاتھ میں، زیادہ دے دو۔ وہی بات ہے جو ہم پیچھے اپنے لفظوں میں کر چکے ہیں کہ رزق کی کمی بیشی سراسر اللہ کے ہاتھ میں، تم کسی کے رازق نہیں بن سکتے، اللہ رازق ہے۔ پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا، تو کسی نے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو بھیجی، اس میں کیا تھا کہ ایک وائٹ گھوڑا ہے سفید گھوڑا ہے، تو کسی دوڑ میں وہ گیا تو ہار گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو گھوڑوں کو پالتے ہیں نا ٹرینر جو ہوتے ہیں وہ گھوڑوں پہ بہت سختی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور گھوڑا عربی زبان میں تربیت کرنے کا ایک سمبل بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی جیسے اپنے بچوں کی تربیت ہم نہیں کر پاتے وہ اس طرح اپنے گھوڑوں کی کرتے ہیں۔ تو مالک نے کیا کیا کہ گھوڑے کو سبق سکھانے کے لیے کہ تم آج کی دوڑ میں کیوں ہارے ہو، اس نے اس کو کھانا نہیں دیا، چلا گیا اس کو بند کیا اس کے پنجرے میں، اور بھی گھوڑے تھے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ گھوڑوں کے کمرے ہوتے ہیں نا اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک گھوڑا نا تو دوسرے گھوڑے اور اس کے بیچ میں جالی ہوتی ہے، اور پھر ایسے گھوڑوں سے گھوڑے ہوتے ہیں۔ اب جب صبح ہوئی تو اس کو احساس ہوا ہوگا کہ میں نے اس کو بھوکا چھوڑا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو میں دیکھ کے آؤں۔ جب وہ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا منظر تھا، دوسرا گھوڑا جو دوسرے کمرے کے اندر تھا وہ اپنے چارے میں سے سامان جالی میں اس کے منہ ڈال کے نا ادھر سے تو اس کو کھلا رہا ہے، اور وہ دوسرا گھوڑا اس کو کھا رہا ہے۔ تم کس کو رزق دو گے؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ میرے نصیب کا رزق کہیں نہیں جائے گا، بلیف میں آدھے سے زیادہ تو غم یہ دور ہو جائیں گے جو ہماری جان کو بیماریوں کی صورت میں لگے ہوئے، مانے کہ نہ مانے ہماری زیادہ تفکرات اور بیماریاں اور ڈپریشن اور سر درد اور گھر کی لڑائیاں اور جھگڑے صرف مال سے متعلق ہوتے ہیں۔ میرے نصیب کا کون لے گا، دیکھو کیا کرتے ہو۔ کہتے ایک شادی تھی تو وہاں لوگ اچھلتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے یہاں تو لائنیں بنتی ہوں گی، ہم بیت کلفی میں اپنے ملکوں میں لائنیں بھی نہیں بناتے، تو ٹوٹ ہی پڑتے ہیں نا۔ تو ایک صاحب بیٹھے تھے بڑے آرام سے، تو کسی نے ان کو کہا کہ بھائی صاحب اٹھیے کھانا نہیں لے رہے، تو کہا میرے نصیب کی بوٹی تم میں سے کوئی نہیں لے سکتا، تم سب لے آؤ، جو میرے نصیب کی ہے وہ نہیں لے گا۔ ہم کہتے ہیں بعد میں گردنیں ملنی ہیں، چلو جلدی کرو، اور اس وقت سوچتے ہیں کہ اپنا نہیں دوسروں کا بھی نصیب اپنی پلیٹ میں بھر کے رکھ لیں، اور بعد میں چکھا چکھی کی اور باقی سب ٹریش۔ اللہ کی نعمتوں کو خود آگ لگاتے ہیں ہم اور ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو رزق اس کے ہاتھ میں، اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے۔ مت سوچو کہ زیادہ یا کم دے کر تم اپنے آپ کو اس طرح خوش کر لو گے یا دوسری طرح کرو گے، یہ اللہ کے ہاتھ میں رزق، اور وہ جس کو دینا چاہے۔ ہم اور آپ کبھی کسی کے رزق کے مالک نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے سورس آف انکم انسان کے ہاتھ میں ہے، انکم انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ محنت آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس محنت کے اینڈ پہ منی ملی وہ بھی مل گئی، کیونکہ آپ نے کام کیا آپ کو منی ملی، وہ منی آپ کے نصیب میں ہے کہ نہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ جتنا بھی لاتے ہوں گے، میری اگر تقسیم غلط لگے تو معاف کریں، میں مثال سے اس بات سمجھا رہی ہوں۔ لے بھی آیا، کام بھی کیا، 200 پاؤنڈ بھی مل گئے، گھر آنے تک راستے میں جیب سے چوری ہو گئے، گر گئے، خود کسی مشکل میں پڑ گیا، گھر میں 200 پاؤنڈ اس وقت آئیں گے جب اللہ چاہے گا۔ کوشش تم کرو اور ساری باتیں اللہ پہ چھوڑ دو۔ کنات کا رزق کیوں نہیں لیتے؟ شکر گزاری کا رزق کیوں نہیں لیتے؟ گھبراتے کیوں؟ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اور میں نے ایک چیز فیل کی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ خواتین بھی یہاں کام کرتی ہیں، وہ ایک اور ایشو ہے۔ میں اپنے ملکوں کی زیادہ مثالیں دیتی ہوں کیونکہ میں ہوں دیسی، آپ مجھے جہاں مرضی رکھ لیں، میں نے رہنا دیسی ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ کاروبار مردوں کے ہوتے ہیں اور غم عورتوں کو لگے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے آئیں کام نہیں، اور پھر کہتی اور ذرا سنار پہ چلیں، وہ چیز دی ہوئی ہے بنی وہ لے آئے، فارغ عورتوں کا یہی کام ہے۔ مت فکر کرے، مت فکر کرے، جس دن آپ نے رزق کی فکر چھوڑ دی، اس طرح بارش کے قطروں کی طرح رزق آپ کے آنگن میں بہے گا کہ آپ کا برتن چھوٹا پڑ جائے گا لیکن آپ سے سمٹے گا نہیں۔ اللہ کہتا ہے تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کرنے دو۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے دین، اللہ کے اس دنیا میں رہ کر اس کی مرضی کو عام کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ آپ یہ کرو، ہم الٹ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے یہ کام کیونکہ ہماری جاب ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس بزنس ہے، تو پھر کر کے دیکھ لو کدھر سے ملتا ہے۔ دیکھیے اصل چیز رزلٹ ہے، اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس کیا ہے۔ ہم ہاتھوں میں آئے ہوئے مال کو مال کہتے ہیں، ट्रांजेक्शंस, 1 लाख की उधर से उधर, 1,000 की उधर, करोड़ों जा रहा है, एंड ऑफ द डे आपके हाथ में क्या आ रहा है? वो जितना आ रहा है वो कर्जों में निकल गया, कहीं किस्तों में निकल गया, कुछ पे वो जो कभी आज से 10-20 साल पहले मियाँ जॉब करते थे तो आता था, आज से अगर आप सब अपने लिए रख लें ना, दूसरों को तो छोड़ दें। क्योंकि खवातीन में अगर कनात आ जाती है ना, तो मर्द भी मुतमईन है ना, अपने रिस्क का फिक्र करना है ना, अपने शोहरों को कभी इसकी मुश्किल डालनी है कि फलां खर्च कहाँ से आएगा, फलां कहाँ से पूरा होगा, क्या होगा, बस जो होगा देखी जाएगी। अल्लाह आपका राज़िक है, अल्लाह की ज़ात, आप देखिए अगर आप उसके मुख्तलिफ रंग देखें ना, तो कहाँ खिला रहा है लोगों को। एक पत्थर के अंदर दबा हुआ एक छोटा सा पौधा, और पौधे के ऊपर एक कीड़ा, और उस कीड़े के मुंह में हरा पत्ता। एक शख्स ने देखा, ये मैंने वर्रज़ाक वाले में वाक्य सुनाया हुआ, अल्लाह सुब्हान तआला के जो नाम है अस्मुल हुस्ना, तो उसने उसको देखा तो कहने लगा बस अब मुझे फिक्र नहीं, जो पन तह में पत्थरों की गहराइयों में एक कीड़े को उसका सब्ज रिस्क खिला सकता है तो मुझे क्यों नहीं खिलाएगा। वो है बेहतरीन राज़िक, उसकी फिक्र करो। अब हम कहते हैं हम कहाँ फिक्र करते हैं, बस ठीक है सब कुछ है यही है कर दिया, तो अल्लाह तआला कहते हैं फिर अगली हिस्से पे अमल क्यों नहीं करते। इतनी बात तो चलो समझ आ जाती है बहुत सारे लोगों के कि अल्लाह राज़िक है, लेकिन उससे अगली जरा मुश्किल से समझ आती है, और वो क्या, वमा अनफक्तुम मिन शयइन फहुवा युख्लिफुहु, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो वो इसे लौटा देता है। जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो अल्लाह तुम्हें दे देता है। अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करते हो, अजर आखरत में मिल जाएगा 10 गुना से लेके 700 गुना और इससे भी ज्यादा। दुनिया में भी अल्लाह बदल देता है, दुनिया में अगर एक इंसान का दिल तंग होता है तो उसको इस आयत को पढ़ लेना चाहिए कि अल्लाह उसको दुनिया में पलटाता है, क्योंकि वहुवा खैरुर राज़िकीन, वो बेहतरीन है रिस्क देने वाला। अब इस एक आयत को जरा देखिए, पहले तो बात है ये बिल्कुल उस हदीस की दूसरी शक्ल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी आप जानते हैं कि अल्फाज अल्लाह सुबहान तला के होते हैं और ज़ुबान मुबारक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले लफ्ज़ ज़रा देखिएगा, युख्लिफ़ु वमा अनफक्तुम, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे, मिन शयइन, लफ्ज़ मिन को देख लीजिए, तबईस, सम ऑफ पार्टिकल, एक पैनी, एक मिनट, एक घंटा, जो वक्त, जो माल अल्लाह के रास्ते में जो चीज दोगे वो तुम्हें वापस मिलेगी। अल्लाह अपने गैब के खजानों से तुम्हें उसका बदल देगा, कभी दुनिया में कभी आखिरत में। आप थोड़ा सा इसको फितरत से देखिएगा, आसमान से कितना पानी नाजिल होता है, जब बारिश हो रही होती है तो कभी कोई सोच सकता है कि इस पानी का अगर बिल देना पड़े तो क्या होगा। इंसान जानवर सब बेधड़क खर्च करते हैं, खेतों को दरख्तों को वो पानी सैराब करता है, क्या कभी वो पानी खत्म हुआ, पूछिए। बारिश इसलिए खत्म हो गई कि सारी जो थी वो खेतों और दरख्तों पे लग गई, उसके बाद फौरन दरियाओं से और पानी जाता है ऊपर समंदरों में और ऊपर जाकर फिर आता है। इसी तरह आप देखिए कि कुआं, कभी खोदा और पानी निकाला देखा होगा, एक दफा जब कुएं से पानी लोग निकालते हैं ना, वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, फिर उसकी जैसे वो गीली गीली नीचे की मट्टी है ना वो दिखती है, फिर वो क्या करते हैं ऊपर से ढक्कन बंद करके जाओ सो जाओ, अगले दिन जाते हैं ना फिर जमीन अपना पानी देती है और अगले दिन वहां फिर 8-10 ढोल आ चुके होते हैं। जितना पानी कुएं से आप निकालते जाते हैं उतना उसकी जगह दूसरा आ जाता है, कुएं तो कभी खुश्क नहीं हुए। तुम्हें क्यों इस बात की फिक्र लग गई कि तुम अल्लाह की चीजें खर्च करोगे तो खत्म हो जाएंगी। हर चीज आप देखिए, हम खाना खाते हैं ना, स्टमक में खाना गया, कंजूसी तो इंसान की है कि हाँ ये पेट में ही रहे खत्म ना हो जाए, लेकिन आप देखिए अल्लाह ने ऐसा निज़ाम रखा है, बॉडी में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, कुछ घंटों बाद खाना खाली हुआ, वो ताकत बन के लगा, पीछे से भूख लगी और खाना आता गया, सर्कल चलता रहता है। फिर इसी तरह आप देखिए, जब चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती ना तो उसकी पैदावार घट जाती है, ये भी फितरत का एक असूल है। मसलन एक सबसे इसकी मिसाल जो औरतों से रेलिवेंट है, आप सब ने इसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा अगर आप बच्चों की माँ हैं। माँ के पेट में, माँ के जिस्म में दूध कब आता है, जब बच्चा आया, जितना दूध बच्चा पीता है उतना और आ जाता है। आप बच्चे को पिलाएं आपको लगता है अब खत्म हो गया दूध, बच्चा सो गया अब दूध नहीं है, उधर बच्चे को भूख दोबारा लगनी, उधर आपके जिस्म में दूध का खजाना आ जाता है। इसके बरक्स आप देखें जो माएँ अपने बच्चों को फीड कराना छोड़ती हैं थोड़े दिन में दूध खत्म, ये है वमा अनफक्तुम युख्लिफु, जितना दोगे उतना मिलेगा। फिर जिस जानवर की पैदावार ज्यादा है ना, यानी जिन जानवरों को आप काटते हैं, मतलब बकरियां, गायें, गोश्त जो खाते हैं, इनको हम खाते ज्यादा ना काटते हैं, तो दुनिया में इनकी तादाद भी ज्यादा है। हर साल कुर्बानी के मौके पे देखिए, हजारों लाखों कुर्बानियां हो जाती हैं, उतने बकरियां जानवर अलग आ जाते हैं। इसके बरक्स अगर आप देखिए, कुत्ते, बिल्लियां, लूमड़ियां, ये नहीं खाते, तो इनकी तादाद बहुत थोड़ी है। अगर ये भी उतने ही होते जितनी बकरियां गाय हैं, तो दुनिया में रहना और जीना मुश्किल हो जाता है। तो जितना खर्च करेंगे उतना होगा। कहते हैं कि इंडिया में एक वक्त तक गाय कटती थी, मुसलमान खाते थे, फिर पाबंदी लग गई कि गाय का गोश्त नहीं काट सकते। उस दिन से आज तक दिन ब दिन वहां गाय की पैदावार जो वो कम से कम हो रही है, और कहां बकरियां ही नहीं। अरबों की एक ही सवारी थी ऊंट, उसी पे आते थे जाते थे। जब से माशाल्लाह लंबी लंबी गाड़ियां, लैंड क्रूजर आ गई, अब आपको इतने ऊंट ही नहीं दिखते। तो फितरत का असूल है कि रखोगे तो कम होगा, रखोगे तो कम होगा। अक्सर लोगों की अपने जुबान से दुनिया की चीजें सुनी होंगी कि जैसे कि कोई अमेरिका में रहता है और उसकी कोई मनी पाकिस्तान में रखी हुई है, डॉलर ऊपर जाता जाएगा, मनी नीचे जाती जाएगी, वो पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू होगा, उसकी मनी कम होती जाएगी। फिर लोग परेशान होते हैं, अच्छा मनी इधर है, उधर है, इधर की उधर है, क्योंकि दुनिया में भी तो इस तरह की डिवेल्यूएशन होती है ना। इसी तरह जब दुनिया में हम माल, दौलत, सब कुछ होने के बावजूद खुले दिल से अल्लाह के रास्तों में नहीं लगाते, कम हो जाता है। और इसकी वजह बद्दुआ। किसकी बद्दुआ? फरिश्ते की। हदीस नोट कीजिएगा, सही मुस्लिम की, अबू हुरैरा से। कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर रोज जब सुबह में लोग दाखिल होते हैं, यानी एवरी मॉर्निंग, यानी आप बिलीव कीजिए कि आज भी सुबह हुआ होगा उठ के, फरमाए दो फरिश्ते नाजिल होते हैं आसमान से और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, यही वो लफ्ज़ है जो खलीफा है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बेहतर बदल दे। यानी आप इधर अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च कर रहे हैं, फरिश्ता आपके लिए दुआएं कर रहा है। जितने आज आप अल्लाह के रास्ते में देंगे, उतने दूसरी तरफ से और आ देंगे आपके। और दूसरी के बाद क्या करता है, वाती मुमसिकन तलफा, ए अल्लाह जो तेरा माल रोक लेता है, बुखल करता है, उसका माल तल्फ कर दे। उर्दू में कहता है ना, तल्फ करना, यानी खत्म कर दे। बद्दुआ देता है फरिश्ता के, जो तेरे रास्ते में नहीं लगाता उसके माल को खत्म कर दे। अल्लाह हू अकबर। नबी सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अनफिक, तू मुझ पे खर्च कर, अनफक अलैक, मैं तुझ पे खर्च करूंगा। अल्लाह वादे देता है, लगाओ। और याद रखिए, ये सिर्फ माल में नहीं है। अल्लाह कहता है माल लगाओ तो माल में बरकत, वक्त लगाओगे वक्त में बरकत, स्किल्स मेरे रास्तों में लगाओ स्किल्स में बरकत, जज्बे कुर्बान करो मेरे रास्ते में, तुम्हारे जज्बों को अच्छा कर दूंगा। तुम मेरी खातिर किसी की मोहब्बत छोड़ रहे हो, लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल दूंगा। कोई सारी दुनिया की दौलत लेकर हमें ये कुछ नहीं दे सकता। आज आप अल्लाह के दीन के लिए अपना वक्त लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा आपके पास फारिग वक्त होगा। आप माल लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा मालदार आप होंगे। और आप देखिए, जितना अल्लाह के रास्ते में आप लगाते हैं ना, हर चीज, वक्त भी लगाते हैं, सेहत भी लगाते हैं, इसकी एक पहचान है। और वो क्या, दुनिया के लिए थकेंगे ना तो गुस्सा आएगा, घबराहट होगी, थक गई, कमर टूट गई, टांगे थक गई, गला थक गया। अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे ना तो फरहत का एहसास होगा, खुशी, इंसबात, इनबिसात, और इतना सुकून मिलेगा, दिल खिलेगा। अल्लाह की राह में इंसान जब जाता है ना, तो फिर प्लस माइनस नहीं करता, ये ज्यादा कम नहीं है, कैलकुलेटिंग माइंड नहीं होता इंसान का अल्लाह के रास्ते में काम करते हुए। कोई भी इतना लगा दिया, वो और लगा दूं। और ऐसा बंदा जो होता है ना, वो सिक्योर किस लिए कि वो खुद करता है। आप देखिए ना कि अल्लाह कह रहे खर्च करो, क्यों करो? इसलिए कि आज माल अपने हाथ में, न जाने कल क्या हो, कोई पाबंदी लग जाए, कोई मजबूरी हो जाए, और कुछ नहीं तो माल चोरी हो जाए। एक किसी का कॉल है, कहते हैं कि औलाद इंसान को कंजूस बना देती है। औलाद होती है ना, तो फिर इंसान उनके लिए सींत सींत के रखता है। ठीक है, अल्लाह ने दी है ना दौलतें, नेमतें भी, औलाद की भी। औलाद को उनका हक तो देना है, लेकिन इतना उनका गम नहीं लगाना कि उनके लिए अपनी आखिरत खराब हो जाए। तो लिहाजा हम सब अपने रवैयों को देखें, हम में से हर एक खुद से पूछे, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, कहीं मैंने अल्लाह का कुछ देना तो नहीं? आप कहते हैं अल्लाह का कहाँ देना होता है हमने, जहाँ अल्लाह के नाम पे होते हैं। आप देखिए कि दुनिया में कैसे असूल है ना, आप बिजली का बिल जमा कराना भूल गए, वो शुक्र करते हैं, आपको पता है ये बात? आपको बिल आता है बिजली का और आप पे नहीं करते, वो तालियां बजाते होंगे क्योंकि उन्होंने अगले ही महीने उस पर इंटरेस्ट लगा के आपको 100 पे 10 ऊपर ले लेने। आप अगले महीने भी नहीं देते वो और खुश होंगे, आपको 20 देंगे। यहाँ का मैंने अभी शायद इतना गौर ही नहीं किया, लेकिन जो साथियों से बातें पता चलती हैं, एक कंपनी मुकर्रर है अलग से नॉर्वे में, कि मिसाल है कि बिजली का बिल आपका मेरा है, हमने नहीं दिया ना, एक दो दफ़ा वो हमें भेजते हैं, हम नहीं पे करते ना, वो एक और कंपनी, उसका सिर्फ काम यह है कि लोगों से पैसे निकलवाना। अब क्या होगा कि वो कंपनी आपको नोटिस भेजेगी, ऐसे इधर भी। और फिर मजे की बात है कि एक तो बिल आपने उनको देना है ना, इलेक्ट्रिक कंपनी को, उस पर हर महीने इंटरेस्ट है, दूसरा उस कंपनी का जो पैसा बीच में से वो भी आप दे रहे हैं। वो बाज़ अब 1-1 हज़ार जो है वो 10-10 हज़ार में करके निकलवाते हैं, वो लोगों से निकलवाते हैं। और मैंने देखा हमारे लोगों के ना यंग घरों में कैलेंडर लगे उस पर लिखा हुआ है, अब तो बहुत कुछ इंटरनेट से ही हो जाते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, कोई देना लेना वहां लिखा होता है कि एक दिन ऊपर से नीचे किया तो ऊपर गबीर कहते हैं वहां, जैसे यहाँ कोई कहे आपको कि आप फीस नहीं देंगे तो आपको एक्स्ट्रा लगेगा, बड़ा आम नाम है, फाइन कह लीजिए आप, यानी फाइन लगा देते हैं वो लोग, और वो तो उसमें खुश हैं, रह गया अल्लाह और उसका दीन, बेचारा कमजोर, किसने पूछना, क्यों पूछना, क्या करें। देखिए ये तो हर बंदे के अंदर से उठेगी बात, मैं तो अक्सर इसको ये कहती हूँ, अल्लाह जाने बंदे जाने, हम बीच में क्या, हमारी क्या मुसीबत है, हमारा क्या लेना और देना, लेकिन हर बंदा खुद से पूछे मैंने अल्लाह का कुछ देना है। और आप देखिए कि यहां भी जब लिस्टें बनती हैं तो वहां भी बनती हैं, हर बंदे का सिर्फ और सिर्फ अपने मामला रब से है। और मेरा इस पर ईमान है कि मैं आज अल्लाह के रास्ते में यहां 10 बचाऊंगी ना, तो वो सूनर और लेटर वो 100 करके मेरे हाथ से निकल जाना है, चाहे वो मेरी गाड़ी का कोई बम्पर टूट जाए या मेरी लाइट टूट जाए या मेरे घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाए, अल्लाह बंदे से निकलवा ही लेता है, उसको खूब अच्छी तरह पता है। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि इन चीज़ों को ना रखो। अब एक हदीस बड़ी खूबसूरत है, सुन लीजिए, जाबिर से रिवायत है, नफ्स सल्लम ने फरमाया, नेक काम सदका है और जो आदमी अपने नफ्स और अपने याल पर खर्च करता है वो भी सदका है। देखिए कितना प्यारा दीन है, आप ग्रोसरी खरीदते हैं 30-40-50 पाउंड लग ही जाते होंगे ना, वो सदका है आपके नाम पे इंशाअल्लाह ताला, फरमाया वो सवाब का भी सबब है। और जो शख्स कुछ खर्च करके अपनी आबरू बचाए वो भी सदका है, और जो शख्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुछ खर्च करता है तो अल्लाह उसे अपने जिम्मे ले लेता है कि इसको इसका बदल भी देगा, मगर वो खर्च, अब यहाँ सुनिए कि ये सारे खर्च तो अजर है, मगर वो खर्च जो फजूल ज़ायदा ज़रूरत, यानी ज़रूरत ही नहीं जिस चीज़ की वो ला के रख दी, तामीरात या किसी गुनाह के काम में हो, तो इसके बदल का वादा नहीं। अब पहले तो आप इसको समझे मेरी जुबान से, फिर मैं आपको इसकी एक और बात सुनाती हूँ। अपनी जात पे लगा रहे हैं, अल्लाह कहता है मैं उतना ही दूँ, आज आपने 50 पाउंड की ग्रोसरी खरीदी, हलाल है, खाना पीना, अल्लाह अगले 15 दिन के लिए आपको कहीं से 50 पाउंड दिलवा देगा, अल्लाह कहता है यो खलिफ हो, ये मतलब है। लेकिन जब बंदा फजूल खर्ची में, नंबर एक, यानी मुझे जरूरत भी नहीं थी उस चीज़ की जो मैं ले आई, और दूसरी सूरत में जो चीज़ गुनाह की हो, ये ले तो अल्लाह कहता है ला युखलिफ, फिर मैं नहीं लाता। इतनी बात क्लियर है? आप इसको आम रुपए पैसों की सूरत में देख लीजिए ना, आप एक हफ्ते में 500 पाउंड खर्च करती हैं, 400 पाउंड आपके वाकई बिल्स पे, खाने पे, पीने पे, सब पे हो गए, अल्लाह आपको इंशाल्लाह कहता है ये मेरे जिम्मे है कि अगली दफ़ा से पहले 400 पाउंड मैंने आपको वापस करने हैं, क्योंकि आपने आगे भी तो सर्वाइव करना है। रह गया वो 100 पाउंड जो आपने बेकार बेतुकी चीज़ों में ख़रीद लिया, जिस तरह या गुनाह की कोई चीज़ है, तो अल्लाह कहते फरिश्तों वो 100 पाउंड मैंने कोई नहीं वापस देना। कैसी डायरेक्ट डील है। अब इसमें एक लफ्ज़ आपने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन साहबी ने किया था, कहते हैं कि ये क्या बात है कि इंसान अपनी आबरू बचाने के लिए दे। आपने हदीस सुनते हो कि गौर किया था इस लफ्ज़ को? तो जाबिर के शागिर्द थे इब्ने मुनकदर, वो कहते हैं कि भाई ये आबरू बचाने के लिए खर्च करना, इससे क्या मुराद है? पहले आप अपने जहन पे बोझ डालें, क्या होगा ये आबरू बचाना, इज्जत बचाने के लिए खर्च करना, ये भला हमारा क्या खर्च होता है? शायद आपको तो ये आ गया होगा ना जहन में कि इज्जत का मसला है, लोग क्या कहेंगे, इज्जत रखने के लिए हम खर्च करते हैं, बात तो बनती है। लेकिन उन्होंने क्या सुनाया, कहने लगे जिस शख्स के मुतल्लिक ये ख्याल हो कि नहीं देंगे तो ऐब जोई करता फिरेगा, बुरा कहता फिरेगा, बदगोई करेगा, तो इसको अपनी आबरू बचाने के लिए देना मुराद है। यानी लोगों की बातों के डर से खर्चा वो भी इसमें आ जाता है। तो बहरहाल दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिल खोल दे, ये क्लॉट्स निकल जाएंगे ना तो जिंदगी बेहतरीन तरीके से चलेगी। वाह वाह खैरुर राज़िकीन, وہ بہترین رازق ہے، سب کچھ اس کا، پھر اس کو ہی دیتے ہوئے ڈرتے ہو، کہاں سے تمہیں خیر ملے گی؟